तुम्हें सबसे अच्छा है कि संसार के बीच और समता भाव और संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूं। यहां इस संसार में खोना और पाना दोनों दुखदायी है। कोई ऐसा हो कि पाने वाला सुखी हो और सिर्फ खोने वाला ही दुखी हो, नहीं भैया, पाने खोने वाला दोनों दुखी है। एक बहुत छोटी सी घटना कल मैं पढ़ रहा था। दो बच्चे स्कूल जा रहे थे और स्कूल जाने में दोनों को रास्ते में देर हो गई। जब स्कूल पहुंचे, गुरुजी ने कहा कि इतनी देर से क्यों आए, तो पहले वाले ने कहा कि क्या करें गुरुजी, एक रुपया मैंने दिया था वो रास्ते में कहीं गिर गया, मैं उसको खोज रहा था और खोजने में देर हो गई और आखिर वो मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला और इस तरह मुझे देर हो गई। दूसरे से कहा कि तेरे को देर क्यों हुई, बोले इनकी वजह से हो गई। अरे इनकी वजह से क्या, क्या उन्हें रोक रखा था, बोले नहीं ये वहां से हट ही नहीं रहे थे। मतलब ये कि वो जो रुपया था ना, उस पर तो मैं पैर रख के खड़ा था, जब ये वहां से हटे तो मैं आगे रहा। दोनों लोग पहुंचे, एक जिसने खोया था वो भी दंडित हुआ, दूसरा जिसने पाया था वो भी लेट हुआ, वो भी दंडित हुआ। एक तो खोने की पीड़ा है, एक तो पाकर के फिर खोने जाए इस बात का है। दोनों को संसार इससे ज्यादा और नहीं है। या हम खो देते हैं तो दुख पाते हैं, मिल जाता है तो उसकी सुरक्षा का इंतजाम, उसका भय वो भी हमें पीड़ा देता है। भैया, इस संसार से, इस संसार के चक्र से कैसे हम मुक्त हों, या कि इस संसार के बीच हम कैसे बेहतर ढंग से जिए, तो सबसे बेहतर ढंग यही है कि हम जहां भी रहें, चाहे गृहस्थ जीवन में हो चाहे साधु के जीवन में हो, अत्यंत निष्पाता पूर्वक रहें। सुख और दुख दोनों के बीच साम्य भाव जितना बन सके, सब एकदम तो 100% तो संभव नहीं, पर जितना बन सके उतना हम साम्य भाव रख सकें, शायद यही प्रक्रिया एक साधक के लिए और एक साधु के लिए आचार्य भगवंता ने अलग अलग ढंग से कही है। आज अपन साधक की एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं जिसमें एक स्थिति थी कि एक साधक या कि एक गृहस्थ अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करता है और फिर देखता है वो कि नहीं, अब तो गृहस्थी का भार इधर बेटे ने संभाल लिया है, उधर चौका चूल्हा का भार बहू ने आकर के संभाल लिया है, तब हम क्यों व्यर्थ में इसमें फंसे रहे। तो नई कमाई करना बंद कर देता है और पुराने संचित धन को भी अपने बेटे और बहू को चाबी सौंप देता है। यहां तक इतनी प्रक्रिया हो चुकी है। आरंभ त्याग करना मतलब नई कमाई करने की प्रक्रिया बंद कर देना। अब बेटे कमाए, बेटे जाने, मैं कोई भी अब नया संचय नहीं करूंगा, पुराना जो संचित मेरे पास है उस पर भी मेरा क्या अधिकार, काय के लिए किया था, इन्हीं बच्चों के लिए इनके सुपर्द कर दिया अब। लेकिन अभी थोड़ा सा भीतर घर में रह रहे हैं तो ये बच्चे जरा समझदार हो जावे, कभी आकर के पूछ लेते हैं कि ये चीज कैसे करें, तो बताने का मन हो जाता है कि वर्षों का अनुभव है इसको ऐसे करो, तो संसार के काम की थोड़ी बहुत सलाह दे देते हैं। कोई काम बिगड़ जाता है तो जरा उलाहना देने का मन होता है, जरा शिकायत करने का बच्चों का मन होता है, कोई जरा ठीक से अपना व्यवहार नहीं करता है घर गृहस्थी में तो उसको समझाने का मन होता है। लेकिन अब नहीं, अब एक और स्थिति ऊंची हो गई कि अब सलाह देना भी बंद कर देंगे। आचार्य भगवंतों ने लिखा, अनुमति आरंभे व परिग्रहेशु अहिकेशु व मैं उसको एक लाइन को बोला, नास्ति खलु यस्य समधीर अनुमति विरतः स मम पद्या। अब पहले तो खुद मैं संचय करने के लिए अस्सी मस्सी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य की मदद लेते थे, अब वो भी छोड़ दी, और जो परिग्रह था उसमें भी थोड़ी मनत्व भाव तो था वो भी छोड़ दिया, लेकिन अब एक चीज एक कदम और आगे बढ़ गए कि खुद तो नया धन नहीं कमाएंगे, पुराना धन भी जितना लिमिट अपनी रखी उतने रखेंगे, उसमें भी मनत्व नहीं रखेंगे अंतरंग में। और अब कोई अगर नया धन संचय कर रहा है या पुराने धन का संरक्षण कर रहा है, मतलब आरंभ और परिग्रह कर रहा है या संसार के लौकिक कार्य कर रहा है, अपने घर गृहस्थी के व्यक्ति को भी उस बात की सलाह नहीं दूंगा, अनुमति आरंभेबा परिग्रही की ऐ ही केशु। लौकिक कार्य जो भी है और परिग्रह आरंभ बढ़ाने वाले कार्य हैं, उन सबके लिए मैं अनुमति भी नहीं दूंगा। क्यों, क्या होता है जब हम किसी काम के लिए अनुमति देते हैं, किसी काम की प्रशंसा समर्थन करते हैं, तो फिर हमें लगता है कि वो काम हमारे मन मुताबिक होना चाहिए, और हमारे मन मुताबिक नहीं होता है तो उसमें हर्ष विषाद होता है। कोई भी कितना भी क्यों ना हो, तो कह रहे हैं कि जो लौकिक कार्य है, पारमार्थिक कार्य है, धार्मिक कार्य है, उनकी बात अभी उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे हैं, तो कहते हैं कि कम से कम जो पाप के कार्य हैं जिनको अब बच्चों ने संभाल लिया है, घर गृहस्थी के काम हैं, इस संसार के काम हैं, उन संसार के कामों में अब अनुमति भी नहीं देना, उनका समर्थन भी नहीं देना, सब कुछ छोड़ देने के बाद भी जिसको दिया है उससे अपेक्षा रहती है कि ये इस चीज का ऐसा उपयोग करे। ध्यान देकर भी हमारे मन में ये भाव रहा आता है कि हमारे पैसा को इस तरह से उपयोग करो जाए, जबकि दे चुके, इसके बाद भी उसके प्रति आसक्ति बनी रह सकती है। इसलिए ये दसवें नंबर की प्रतिमा रखी है गृहस्थ को, गृहस्थी में रहते हुए भी जरा अभ्यास तो कर लो, नहीं तो बाहर जाओगे तो फिर अभी घर में अपने बच्चों को जैसे सब दुनिया के कामों की सलाह देने की आदत पड़ी है, बाहर समाज के बीच जाओगे तो सन्यासी बन करके भी सबके कामों में इंटरफियर करने का मन बना रहेगा, बताइए। इसलिए घर में रहकर के ही ये साधना कर लो कि अपने घर के लोगों के काम में भी इंटरफियर नहीं करना, फिर बात दूसरों के में क्या इंटरफियर, बच्चे जैसा कर रहे हैं उनको करने को, बनाते हैं बनाए, बिगाड़ते हैं बिगाड़े, मिटाएं तो मिटाएं, हमने तो छोड़ दिया। इतनी निष्प्रियता घर में रहकर के, और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर घर छोड़ देने समाज के बीच रहने लगे तो फिर कैसा आ जाता है, मैं थोड़ा बड़ा हूं इन सबसे, हां ऐसा अहंकार आ जाता है। घर में रहकर के ऐसे व्रतों का पालन, दसवीं प्रतिमा वाला घर में है, अभी घर नहीं छोड़ा, कोई नहीं पूछता, उसके लिए कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, यश ख्याति नहीं मिल रही, तो ये जीतने के लिए भी इतनी ऊंचाई पर पहुंच करके घर में सामान्य व्यक्ति की तरह रह रहे हैं, बताइएगा। और आज के समय में तो जरा सा कुछ करने लगे तो फिर मंच माला और माइक चाहिए, तीन मकार, वो वाले तीन मकार तो नहीं, मध्य मधु मांस वाले, ये तीन मकार और नए हैं, ये मंच माला और माइक तीनों में ना है, ये तीन मकार वो मध्य मधु मांस है, तो ये भी चाहिए थोड़ा सा भी अगर, तो देखो घर में रहकर साधना करो। और दूसरी चीज, घर में रहकर के ये जरा सा विचार आएगा कि ये हमारे अपने हैं, अच्छा भोजन देंगे, कहते नहीं, चाहे सरस भोजन दें और नीरस दें तो अपने हैं, इसलिए शिकायत मत करना, ऐसी अगर निष्पक्षता आ जाएगी तो बाहर निकलोगे तब भी यही प्रक्रिया बनी रहेगी, नहीं तो यही प्रक्रिया रहेगी कि मुझे सरस मिल गया है तो आनंदित है, नीरस मिल गया है तो शिकायत से भर गया है मन, घर में ही साधना कर लो पहले कि हो सकता है अपने ही बच्चे और ढंग से आहार न करें, कोई बात नहीं, शांत जो सामने रख दिया ठीक। ये साधना दसवीं प्रतिमा वाला करता है, बेटा अगर घर में और बुला लेता है कि चलो पिताजी भोजन का समय हो गया, बहू ने बुला लिया तो जाके थाली पे बैठ गया चुपचाप, एक बार भी भोजन करता है, इतनी निष्फलता हो गई बार बार भी नहीं, कोई और अन्न आकर के निमंत्रण करता है तो निमंत्रण स्वीकार नहीं करता, भोजन के समय पर आओगे और कहोगे कि चलो तो चलते हैं बस। हां इतना दसवीं प्रतिमा में हो जाता है। अभी घर में ये सोचो, घर में रह करके एक एक ग्रास्त ऐसा कर सकता है। और तीसरी या चौथी बात, ये सारी चीजें मैं सोच रहा था कि अब जब आरंभ का त्याग कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, घर में अभी भी है तो करते क्या है फिर? ये बहुत बड़ी साधना है, एक प्रतिमा इसी के लिए रखी है कि आपने स्वयं को कमाना छोड़ दिया, जो कमाया था वो भी दे दिया, लेकिन दोनों के प्रति आसक्ति बनी रह सकती है अभी भी कि देखो ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसे में ज्यादा पैसा आएंगे, अब ऐसी सलाह मत देना, और ये सब मैंने मकान बना के इनको दिया, मैंने इतनी संपत्ति अपने बेटे को दी, हम पूछता तक नहीं, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए दसवीं प्रतिमा वाले के मन में। अब तुमने तो छोड़ ही दिया, अब इस बात को उलाहना क्यों दे रहे कि मैंने इतनी संपत्ति अपने बेटे को दी, मैंने इतना घर बना के दिया, मेरी बिल्कुल सेवा नहीं करता, अब कहते नहीं, क्योंकि कल घर से बाहर निकलोगे और कोई सेवा नहीं करेगा तो बड़े आकुल विकल हो जाओगे, इसलिए घर में ही तो जिनको सब कुछ दो वो भी मैं कर है, जान को कचो नहीं था उनसे का अपेक्षा रखोगे? ये देख लो आप। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि किसी से भी अपना काम करवाने के लिए नहीं कहना कि जाओ हमारी फलानी चीज उठा लाओ, क्या क्या तुमने हमको नौकर रख रखा है क्या? वो अगर सेवा की दृष्टि से कहें कि भगवान मैं लाता हूं, ठीक है लाओ तो लाओ, नहीं लाओ तो मत लाओ। ब्रह्मचारी अगर हमेशा कहते कि ब्रह्मचारी हमने साथ में दिया है, उसको ब्रह्मचारी समझना, उसका धर्म ध्यान में निमित्त बनना, उसको नौकर न मानना, उससे अपना काम न करवाना कि ब्रह्मचारी हमारा फलाना काम करके आ, ब्रह्मचारी हमारा फलाना काम, ये साधु के लिए है। और दसवीं प्रतिमा वाले को कह रहे कि अपने घर के लोगों से भी अपेक्षा नहीं रखेगा, बाहर वालों से तो क्या अपेक्षा, जिनको सब कुछ दिया उनके प्रति भी इतना निष्पय कि दे दिया, अब मुझे क्या करना, अब क्या उसकी सास संभाल के लिए सलाह दूं, नहीं तो देने के बाद भी ये मेरा है ऐसा मन में भाव बना रह सकता है। एक घटना सुनाऊं आपको और इतनी ही बात आज अपन करेंगे, पर्याप्त है मेरे ख्याल से, क्योंकि अपन ने बहुत सारी चीजों की साधना करने की पद्धति समझ ली है, अपन को ये धीरे धीरे करके ये कैसे साधना की पद्धति हमारे क्रमिक विकास के लिए बताई है इसको अपने जीवन में, भले ही अपन प्रतिमा नहीं ले लें भैया, जितनी शक्ति है उतना करें, लेकिन जरा समझ तो ले लें कि क्या सचमुच घर में रहकर इतनी निष्फलता साधी जाती है। अभी तो कदम कदम पर हमारा मन दूसरे को डायरेक्शन देने का होता है, और वो दसवीं प्रतिमा वाला कैसा होता होगा कि किसी भी काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं, जैसा करो सो करो, बने तो बने, बिगाड़ो तो बिगाड़ो, भोजन कर लिया और बस चुपचाप 24 घंटे अपने धर्म की साधना, अब घर गृहस्थी नहीं साधना, अब तो धर्म की साधना करना, घर में है अभी लेकिन घर में रहकर के भी घर गृहस्थी नहीं साधना, इसलिए ये साधना करवा रहे घर में कि जोन से मैं बनू घर में, बेटा कर है बन में, हां घर में अगर आप अपने चार लोगों के बीच निष्फल होकर नहीं रह सकते तो बाहर 4000 और 40000 के बीच आपकी निष्फलता गड़बड़ा जाएगी, आप अपेक्षाएं रखने लगेंगे कि मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, कहते नहीं तुम्हारे अपने जो हैं कल तक जिनको अपना मानते थे उनके बीच भी इस संसार के प्रति विरक्ति आ गई है, अब साम्य भाव की साधना सदने लगी है। साम्य भाव की साधना तो करनी है, घर में रह के करते हैं एक समय तक, फिर उसके बाद साम्य भाव इतना सड़ जाता है कि बाहर सबके बीच, और अभी तो अपनों के बीच समता रखना सीखा था, अब अपने पराए कोई नहीं रहे, सब अपने हो गए, अब उनके बीच भी साम्य भाव रखो। तब साम्य भाव के द्वारा हर्ष विषाद नहीं होने से संसार से पार होंगे। संसार से पार होने का एक ही उपाय है कि इस संसार में हर्ष विषाद जितना कम हो उतना कम करते जाओ, उससे मुक्त हो सको तो मुक्त हो जाओ, वरना जो चीज अपन दे देते हैं वो चीज भी हमारे मन को घेरे रहती है देने के बाद भी। एक उदाहरण है इसका, दो मित्र थे, वर्षों के बाद वो मित्र अपने मित्र से मिला और ऐसी गरीबी हालत में मिला कि वो जो रईस मित्र था उसको थोड़ा संकोच लगा कि अरे ये मेरा मित्र कैसी स्थिति से गुजर रहा, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा, फिर भी अब आया है 20 बरस के बाद मिला है, बड़े प्रेम से मिले और घंटा चर्चा हुई, पर अचानक उसको याद आया कि अरे अपन दोनों जन तो खूब बातें कर रहे हैं, और भी अपने मित्र हैं, भूल गए हो गए तुम तो, वो सब यहीं रहते हैं, आओ चलो अपन मिल के आए सब मित्रों से, तुम तो वर्षों से नहीं मिले हो। तो वो जो नया मित्र आया था गरीब था, उसने कहा सुनो ऐसे नहीं जा पाऊंगा, तुम्हारे पास तो आ गया हूं, और मित्रों के पास ऐसी फटी हालत में जाना ठीक नहीं है।
अरे तुम कैसी बात करते, हमारे कपड़े रखे हुए तुम वो ले।
और एक जोड़ी कपड़े जो कहीं से मिले थे, मेहमानों में मिलते अच्छे, वो मिले थे सो वो रखे थे, उनमें कभी पहने नहीं थे, सो वो उठा करके उसको दे दिए, उसने पहने से उस पर बड़े सुंदर लगे। अब सुंदर लगे तो मन में बात बहुत कठिन है, अपनी छोड़ी हुई दी हुई चीज दूसरे को उपयोग करते देख करके विकल्प में आ गए, अरे बहुत कठिन है बाबू, बहुत कठिन, अति कठिन है। अपनी छोड़ी हुई चीज को दूसरा उपयोग कर रहा है तो देख करके लगता है कि हमारी होगी हमारी, अगर भी देने के बाद भी हमारी है। अब क्या हुआ कि पहन लिए वो सुंदर लग रहा है वो, अब इनके कपड़ों से भी, और मजा ये है इस परिग्रह के साथ कि अपन को जो चीज मिल जाती है वह अच्छी नहीं लगती, दूसरे को जो मिली है वह ज्यादा अच्छी लगती, गोल कपड़ा दूसरा पहने हुए हो तो लगता है कि बहुत सुंदर है, अपन जब खरीद के बोल ले आवे तो दो चार दिन के बाद अब जो नहीं अब दूसरा में नहीं देखते तो संसार में ऐसे ही तो होता, अब वो कपड़े दूसरे के बहुत सुंदर लग रहे हैं अपने मित्र के, अब ले जाओ उसको दूसरे मित्र के यहां पर। सारी चर्चा हुई, ये हमारे पुराने मित्र हैं 20 बरस के बाद मिले हैं, तुम तो भूल ही गए होगे उस समय हम बचपन में खेला करते थे, और सब बड़ी प्रशंसा अपने मित्र की, और फिर बाद में धीरे से कहा कि मैं रंग कपड़ों की सजी नहीं लाए। अब देखो वो जो भीतर का भाव थे वो तो गया नहीं, सब बातें करी मित्र को मिलवाया, लेकिन आखिरी में कहने रंग कपड़ों की सजी नहीं लाए। वो मित्र ने मित्र बड़े पशु पेश में बाहर आया कि ले सुनो अब नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ में, अरे तुमने कपड़े दिए तो ये कहने की क्या जरूरत थी, बोले यार क्या करें वो बहुत हमने मन में तो बहुत सोचा था कि हम कुछ भी नहीं कहेंगे और क्या करें, लेकिन वो मित्र की बात के लिए हम बहुत सावधान रहेंगे, अब नहीं कहेंगे कुछ भी नहीं कहेंगे। अब चले भैया दूसरे मित्र के यहां, वो बहुत कठिन है बात, इतनी आसान नहीं है जाना भीतर से, अब दूसरे मित्र के यहां गए तो दूसरे मित्र से भी सारी बातें कहीं कि वर्षों बाद आए हैं, बड़े पुराने मित्र हैं, बड़े प्यारे हैं, और हम लोग बचपन में ऐसे ऐसे और खेला करते थे, अब मुंह पर भी है कहानी और आगे बढ़ती है, तीसरे के घर जाते हैं और सारी चर्चा होती है कि बड़े अच्छे मित्र हैं, वर्षों बाद मिले हैं, और बहुत कोशिश करता है वो कि कुछ भी नहीं बोले, लेकिन आखिरी दम निकलते निकलते और कहता कि वो कपड़ों की तुमने घूर के देखा तो कहता मुझे कुछ नहीं कहना कपड़ों को आखिर। ये मेरे हैं, ये उन्हीं के हैं, अगले कपड़ों की मुझे कुछ नहीं कहना इनके बारे, ये भी कहना ही है। इतना भीतर हमारे इन चीजों के प्रति आसक्ति हो सकती है। आचार्य भगवंत इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने एक अलग से प्रतिमा रख दी कि सब छोड़ा, लेकिन छोड़ने का भाव भी छोड़ देना कि मैंने ये छोड़ा है, कल तक ये मेरा था, इस तरह का भाव छोड़ना यह भी बहुत कठिन है। अब संसार में रहते हुए अगर हम इतनी निष्पा का साध ले तो ही हम संसार से पार हो सकते हैं। क्रम क्रम से अगर हम अभ्यास करें, थोड़ा सा अभ्यास अपने जीवन में, जैसे कि बहुत सहज सी चीज है कि अपन जो ज्यादा घर गृहस्थी में इंटरफेयर करते हैं, ये जो एक आदत है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि महाराज आप कुछ नहीं बोलते, आप कुछ भी होता रहता कुछ भी नहीं बोलते। अब हम उनसे क्या कहें कि मुनि महाराज होने के बाद वहां कह रहे हैं कि सब ग्रस्त दसवीं प्रतिमा वाला कुछ नहीं बोलेगा, जो करो बनाओ तो मिटाओ, तो सच्चे रास्ते पे चलो गलत पे चलो, जो करने करो, हम कौन होते हैं। दसवीं प्रतिमा वाले को सलाह दी जा रही है कि वो किसी के किसी भी कार्य में पता नहीं कौन किस दृष्टि से क्या कर रहा है, भगवान जाने वो क्या कर रहा है, हम कौन होते हैं। हम तो अपना कल्याण करने के लिए जो हमें करने योग्य है वो करें, दूसरे को क्या करने योग्य है उसकी जिम्मेदारी उसकी है। इतनी निष्पाता आना बहुत मुश्किल है, पर साधना तो यही है भैया कि जितना बने उतना संसार में सब देखो, जाने देखो, बिगड़ो मत। और हम लोग जानते देखते तो हैं कमती और बिगड़ तो ज्यादा है। जाने देखो साक्षी भाव से अत्यंत निष्पय होकर के संसार में क्या क्या चल रहा है। एक रंगमंच है, जैसे कि जीव आता है रंगमंच पर अपना नाटक दिखाता, अपना खेल दिखा के बाहर निकल जाता है, ऐसे ये संसार है। यहां कोई हर्षित है, कोई विषाद से युक्त है, कोई सच्चे रास्ते पर जा रहा है, कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, सब तरह के जीव अपने हिसाब से जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ जानता देखता हूं, मैं उसमें रचता बसता नहीं हूं। ये अगर चीज हमारे साधना में आ जावे, कम से कम इतना तो करेगा भैया घर गृहस्थी में कि चरा जरा सी बातों में, और जो अपन बच्चों को टोका टाकी करते हैं, जरा जरा में उलहना और शिकायत करते हैं, या तो संस्कार दो तो बचपन से दो तो कहने की नहीं रह जावे, और जब बड़े हो गए तो उसके बाद 16 वर्ष का पुत्र होने के बाद लिखा है कि मित्र के समान व्यवहार करना। अब उसके किसी भी काम में अगर मांगे तो सलाह देना, अन्यथा चुप रहना। मित्र के समान सलाह देना, पिता के समान अनुशासन नहीं करना। विनोबा के जीवन की घटना सुना और बात पूरी हो। उनके पिता ने यही उदाहरण प्रस्तुत किया था, घर में रहते हुए विनोबा को रोज किसी न किसी काम की डांट पड़ती थी, कोई ना कोई गलती निकाली लेते थे पिता। रात 9 बजे भी आएंगे लौट करके, और विनोबा सो गए होंगे तो जगवाएंगे, विनोबा सो गया क्या, हाँ सो गया, जगाओ तो। जगा करके पूछेंगे कि फलाना काम किया था, वो तो नहीं कर पाए, तो डांटेंगे और डांट करके कहेंगे जाओ कल कर लेना, सो जाओ। ठीक है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि पिता आए, विनय जाग रहे हैं, बचपन का नाम विनय था उनका, विनोबा का, तो जाग रहे हैं, फिर भी पिता ने कुछ नहीं बुलाया, नहीं आज तो डांटा भी नहीं। अब ये बड़ी मुश्किल में, देखो मुश्किल में, नींद नहीं आई रात ठीक से, सुबह 4 बजे मां उठी तो ये भी उठ गए, मां कल पिता आए और पिता ने मेरे से कुछ भी नहीं कहा, रोज आकर के कुछ तो थोड़ा बहुत डांट लेते थे, आज तो गेले तक नहीं, इतनी निष्पयता बहुत कठिन है। मां ने कहा उन्हीं से पूछना, तो सुबह जब पिता जागे तो पिता से कहा कि कल मेरे से कोई गलती नहीं क्या, आपने इतना भी नहीं मेरे लिए कुछ कहा, कुछ तो कह लेते, गलती भी हुई है तो भी कुछ कह लेते। तो पिता की आंख में आंसू आ गए, इशारा किया कि उस टेबल पर लिखा हुआ कागज रखा है, देख लो। मुन्ना ने उठा करके कागज देखा, उस पर लिखा था कि मैंने अपने बेटे को आज 16 बरस तक किसी न किसी बात के लिए अनुशासित करने के लिए तक जो मैंने अपने बेटे को डांटा या समझाया वो सिर्फ कर्तव्य मान के समझाया है, मेरा बेटा इससे दुखी हुआ होगा, मैं अपने पुत्र से आप क्षमा याचना करता हूं कि मैंने 16 बरस तक उसे जो कुछ कहा उसकी वो बुरा ना माना, मैंने तो उसके अच्छे के लिए उसे कुछ थोड़ा बहुत सलाह दी है। भैया ऐसी घर गृहस्थी में रह करके भी क्या निष्पयता आ सकती है, अपन कौन सी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी निष्पयता। ये आचार्य भगवंतों ने संसार से बचने का उपाय बताया है कि उसके सुख दुख में और साम भाव रख करके हम संतोष पूर्वक अपना जीवन जिए तो हम संसार से पार हो सकते हैं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य विमल विद्या सागर।
शाश्वत सुख देशक है, मन स्वरूप तुम्हारा है, you
हो।